તારીખ 3/5/1995 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 86 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 477
નાશ નહીં હુઆ ઓર વો ક્યા ક્યા બાત થી ક્યા કરને સે યે પરિભ્રમણ કી નિવૃત્તિ હો ઇસકે સંશોધન મેં જાતે હૈં तो हमारे मुमुक्षु की भूमिका में प्रतिबंधक कारण कौन कौन से हैं इनका पता चल जाएगा। प्रतिबंधक कारण माने रोकने वाले कारण, हम कहां हमारे आत्मकल्याण को गौण करते हैं और कहाँ हम दूसरे संसार के कार्य को मुख्य कर लेते हैं और ऐसा क्यों होता है हमारे से। जब हमको बौद्धिक स्तर से ये बात समझ में आ गई कि आत्मकल्याण करने से चारों गति का जन्म मरण का नाश, जन्म मरण के दुख का नाश और चारों गति में दूसरे दूसरे प्रकार के अनेक प्रकार के होने वाले दुख का भी नाश होता है, तो फिर इसकी मुख्यता हमें क्यों नहीं आती है? हमारे परिणमन पर से इसका संशोधन चलेगा। तो अनेक प्रकार के जो प्रतिबंधक कारण हैं वो प्रतिबंध कारण का हमको पता चलेगा। अगर हमारे स्वयं से इसका पता नहीं चलेगा तो सत्संग से इसका पता चल जाएगा, क्योंकि इसके मिटाने के लिए सत्संग जैसा कोई साधन नहीं है। तो सत्संग से, सद्गुरु से, सत्पुरुष से ये पता चलेगा कि इन इन कारणों में हमारी रुचि रही है संसार में और इस प्रसंगों में असत प्रसंग और असत्संग में हमारी रुचि रही है, या समाज, कुटुंब, शरीर आदि अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी वर्तता है कि जिसके कारण से आत्मकल्याण नहीं हो पाता। एक 211 पत्र में और 207 पत्र में वो बात लिया है कि आत्मकल्याण वैसे तो सरल है, सत है वो कहीं कहीं दूर नहीं है, परंतु दूर लगता है। हमारा स्वरूप हमारे से दूर नहीं है और जो हमारा सत स्वरूप है, सत मैंने अस्तित्व रूप जो स्वरूप है वो सत है, सत ही है, सत सत ही है, उसमें कोई स्वरूप में फिर बदली नहीं हुई। भले ही हम स्वरूप से अनजाने रहे हैं और अपने को अन्यथा मानते रहे हैं, सत्स्वरूप नहीं माने, जैसा है ऐसा स्वरूप नहीं माना, नहीं स्वीकार किया। तो सामने के पेज पर 207 में वही वचनामृत है कि सत सत ही है, सत सरल है, सुगम भी है। वो आत्मकल्याण होना वो इतना दुर्गम नहीं है, सुगम ही है और सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है। और कहीं भी हो, कोई भी प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, ऐसा नहीं है कि अनुकूलता हो तो सत की प्राप्ति होवे, और प्रतिकूलता और उपाधि हो तो सत्य की प्राप्ति नहीं होवे, आत्मकल्याण नहीं होवे, ऐसा नहीं बनता। सर्वत्र हर हालत में कोई भी प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो उसकी प्राप्ति होती है, परंतु एक शर्त है, इस सत को बताने वाला सत चाहिए। तो सुबह बात चली थी कि बिना ज्ञानी, बिना सदगुरु ज्ञान होता नहीं है। सत हमारा स्वरूप है, और सत हमारा स्वरूप है फिर भी हमें हमारा स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है, या हमारा स्वरूप का हमें दर्शन नहीं हो रहा है। कोई असत भावों का पर्दा बीच में है जिससे हम हमारे स्वरूप का दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसको कोई बताने वाला चाहिए। संक्षेप में तो कृपालु देव ने दो ही बात बताई है, एक स्वच्छंद और एक प्रतिबंध। जीव को परिभ्रमण का चालू रहना जो हुआ है, इसका दो कारण लिया है, स्वच्छंद और प्रतिबंध। स्वच्छंद माने क्या? कि सदगुरु की आज्ञा बिना धर्म साधन हमारे मनमानी करके कर लेना, हमको जो अच्छा लगे वो कर लेना। जो भी धर्म साधन है वो हम कर लेते हैं, वो हमारी भूमिका में अब क्या करने योग्य है उस विषय में हम अनजाने होते हुए भी कुछ भी कर लेते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सी दवाइयां हम रखते हैं और बिना डॉक्टर के पूछे कोई भी दवा हम ले लेते हैं। कितनी मात्रा में लेना, कब लेना, कब नहीं लेना, उसका हमें पता नहीं है। कोई बुखार आया तो उसमें चार पांच दवाइयां हैं, सिर दर्द हुआ तो उसमें ये 10 दवाइयां हैं, कोई भी ले लेते हैं। ये स्थूल विषय होने पर भी ऐसा नहीं किया जाता। तो जो विषय में हम अनादि से अनजाने हैं और जो विषय सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, ऐसा होने पर भी हम हमारी मनमानी करते हैं, वो स्वच्छंद है। या पंचेंद्रिय के विषय में हम निरर्गल रस लेते हैं। निरर्गल मैंने क्या, जिस पर कंट्रोल नहीं है उतना रस हमको आ जाता है, हमारे परिणाम पर कंट्रोल नहीं रहता हमको, इतना रस से हम पंचेंद्रिय के विषय में प्रवर्तन करते हैं उदय आने पर, वो भी स्वच्छंद है। ये अशुभ भावों का स्वच्छंद है, ये शुभ भावों का स्वच्छंद है, दो प्रकार के स्वच्छंद है। और प्रतिबंध में हम हमारे आत्मकल्याण को गौण करके कभी समाज को मुठ करते हैं, कभी समाज में ये बात चलेगी, समाज में वो बात होगी, समाज में वो बात होगी, हमें लाभ होता है कि नहीं होता है उनका हमें ख्याल नहीं है। तो समाज प्रतिबंध से या समाज में हमारी इज्जत बनी रहे या बढ़ती रहे या कम नहीं हो, इसी कारण से हम आत्मकल्याण के साधन को यदि गौण करते हैं तो ये समाज प्रतिबंध है। परिवार कुटुंब परिवार में भी सब एक अभिप्राय के नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न अभिप्राय के जीव आते हैं, तो उनको खुश करना, उसको राजी रख करके जितना होवे उतना करना, क्या करना, वो नाराज होवे ऐसा नहीं करना। ऐसे आत्मकल्याण को गौण करना और कुटुंब परिवार के मुख्य करना, इससे भी आत्मकल्याण नहीं होता है। तीसरा शरीर प्रतिबंध है, उसमें हमारे शरीर की अनुकूलता रहे ऐसा हमें करना। क्या करें, आप गर्मी के दिनों में शिविर रखते हैं, हाँ, गर्मी का दिन हमको अनुकूल नहीं पड़ता है,
व्यापार का सीजन है ये,
और ये लग्न का व्यापार का सीजन होता है, बहुत घराकी रहती है इन दिनों में, हमारा व्यापार बढ़ता है तो हम कमाई को छोड़ करके कैसे आ सकते हैं, इतना दिन कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के संसार के कुटुंब के कार्य को मुख्य करके हम सत्संग आदि साधन को गौण करते हैं, तो ये भी हमारा अनुकूलता प्रतिकूलता विषय देह प्रतिबंध है, शरीर प्रतिबंध है। जिसको समाज प्रतिबंध होता है उसको कुटुंब प्रतिबंध और शरीर प्रतिबंध तो होता ही है, और जिसको कुटुंब प्रतिबंध होता है उसको शरीर का प्रतिबंध तो होता ही है। क्यों कि शरीर की अनुकूलता कुटुंब से ज्यादा मिलती है, हमारे घर में हमारी सब प्रकार की सुविधा है वो बनी रहती है। विचार भेद होने से एक दूसरे का कोऑपरेशन बंद हो जाता है तो हमको अनुकूलता नहीं पड़ती है फिर। तो जिसको कुटुंब प्रतिबंध है उसको तो शरीर प्रतिबंध है ही, और जिसको शरीर प्रतिबंध है वो भी आत्मकल्याण को प्राप्त नहीं करता। आत्मकल्याण की भावना मुमुक्षु जीव को इतनी तीव्र होनी चाहिए, इतनी तीव्र होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, जो 128 नंबर के पत्र में कृपालु देव ने शब्द लिखे हैं वो फिर से पढ़ने योग्य है, पृष्ठ संख्या 222, दूसरा पैराग्राफ। चाहे तो हो, चाहे जैसा हो, गमे तेम हो, चाहे जैसा हो, चाहे जितना दुख सहन करने का हो, चाहे जितना प्रेशर सहन करने का हो, चाहे जितना उपसर्ग सहन करने का हो, चाहे जितनी व्याधियां सहन करने का हो, चाहे जितनी उपाधियां आपड़े, चाहे जितनी व्याधियां आपड़े, आधियां आपड़े, चाहे तो जीवन काल मैंने आयुष्य एक समय मात्र मैंने बहुत अल्प रहा हो, और संसार के बहुत से कार्य बाकी रह गया हो, कुछ भी हो, दुर्निमित हो, मैंने निमित अनुकूल न हो, सब प्रकार के प्रतिकूलताएं हो, परंतु ऐसा करना ही है, वहां तक हे जीव तुम्हारा छुटकारा नहीं है। इतनी जोर से तैयारी आए बिना आत्मकल्याण के मार्ग का समीप जाने में शुरुआत नहीं होती है। इस शुरुआत में कितना जोर आता है तो आत्मकल्याण होता है। आप ये कह सकते हैं कि हमारी तो कमजोरी चारित्र मोह की है और हमें तो दर्शन मोह हटाना है पहला, और अनेक प्रकार के ये छोटी मोटी बात में जो हमारे परिणाम बिगड़ते हैं वो तो चारित्र मोह के हैं। किंतु एकांत ऐसा नहीं है, ये परिणाम चारित्र मोह के अवश्य है लेकिन एकांत ऐसा नहीं है। मुमुक्षु को दर्शन मोह साथ में है ही, तो जो प्रतिबंधक कारणों में रुकता है उसमें चारित्र मोह को नहीं गिनना, उसमें दर्शन मोह को मुख्य करना है कि दर्शन मोह के कारण से हो रहा है, ऐसी बात है।
रुकना होता है वो दर्शन मोह के कारण से,
दर्शन मोह के कारण से रुकना होता है। ये नींव की ईंट है, फाउंडेशन स्टोन जिसको कहते हैं, हमारा जो अंतिम ध्येय है, अल्टीमेट गोल जिसको कहते हैं, वो सिद्ध पद का है, वो मामूली चीज तो नहीं है। और इसके सिद्ध पद पाने के पहले जो कंस्ट्रक्शन होता है मोक्ष मार्ग का, वो किस आधार पर खड़ा रहता है इसका हमें विचार करना है। किस आधार पर खड़ा रहता है, माया की नींव की ईंट पर वो सिद्ध पद खड़ा है, और वो ईंट, नींव की जो ईंट है वो मुमुक्षु की भूमिका में होती है। यथार्थ मुमुक्षुता आई, दृढ़ मुमुक्षुता आई तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा तो मुनि पद आएगा, मुनि पद आएगा तो केवल ज्ञानादि होगा, केवल ज्ञान होने से सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। उत्तरो उत्तर परिणाम है उसका, नींव में कौन से परिणाम रहे हैं ऐसा कभी नहीं लेने का है कि हम तो सामान्य मुमुक्षु है तो हमारा बल कहां से, हमारे पास इतना पुरुषार्थ कहां है, बल कहां है, नहीं ऐसा नहीं है। जो 128 में लिखा है इतना जोर आता है। एक रूपालु देव ने अपने अनुभव से लिखा है कि मेरी भूमिका में तो मुझे इतना जोर आया है, बाद में मुझे ज्ञान दशा हुई है, ये पत्र लिखने के बाद ज्ञान दशा की प्राप्ति हुई है, 23 वर्ष में वो पत्र है। तो मात्र उपदेश नहीं दिया है, उन्होंने अपना परिणमन को व्यक्त करके लिखा है। ज्ञानी जब मुमुक्षु दशा की बात करते हैं तो वो अपने अनुभव की बात करते हैं कि भूतकाल में हमारा परिणमन ऐसा चला, बाद में हमको ज्ञान दशा की प्राप्ति हुई, क्योंकि वर्तमान में वो ज्ञान दशा में है। और बात करते हैं मुमुक्षु की भूमिका के, तो कोई शास्त्र पढ़ करके दूसरे की बात नहीं करते हैं कि फलाने ग्रंथ में ऐसा लिखा है, वो अपने अनुभव की बात करेंगे, क्योंकि थोड़े समय पहले ही अपना अनुभव हो चुका है कि हम मुमुक्षु दशा में किस प्रकार से परिणाम में गुजरते थे, वो खुद को स्मरण में भी है और अनुभव में भी है, तो उसने अपने अनुभव की बात लिखी है। उतने जोर से प्रवेश होने पर फिर आगे की बात आसान होती है, को कहते हैं कि सत सरल है और सुगम है, तब सत सरल है और सुगम है, वरना सत सरल और सुगम है ऐसी बात नहीं है। कुटुंब प्रतिबंध में अनेक प्रकार के कौटुंबिक कारणों से आत्मकल्याण की गौणता हो जाती है, वो चारित्र मोह का परिणाम नहीं लेना है, ये हमारे दर्शन मोह का परिणाम है। ये कुटुंब में हमारा अपनापन होता है इसलिए मुख्यता आती है, पर पदार्थ में अपनापन भाषित होना, लगना, अनुभव होना, ये दर्शन मोह के परिणाम है, सिर्फ चारित्र मोह के नहीं है। चारित्र मोह इसमें है सही, परंतु वो अकेले चारित्र मोह के नहीं है, उसमें दर्शन मोह मुख्य है। समाज का प्रतिबंध भी दर्शन मोह का है, वो तगड़ा दर्शन मोह का है। ये सबसे तगड़ा दर्शन मोह होता है तब लोक संज्ञा उत्पन्न होती है, और लोक संज्ञा या लोगों की नजर में अपना स्थान कैसा रहे, ये दृष्टिकोण को कृपालु देव एक पत्र में कालकूट जहर बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं उसको? ये कालकूट जहर है, मैंने सामान्य जहर नहीं है, कातिल जहर जो होता है, तीव्र कॉन्सेंट्रेटेड पॉइजन, उसकी बोतल को भी नहीं छूना। क्या अगर इसकी बोतल एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखने का हमारे को कारण बना तो तीन दफे साबुन से हाथ धो लेना है, एक दफे नहीं धोना, तीन दफे धोना। ऐसा हम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बहुत कातिल जहर था, इसकी थोड़ी भी असर रह जाएगी तो मरेंगे तो नहीं, लेकिन वॉमिट वगैरह इतना हो जाएगा कि हम परेशान हो जाएंगे। ऐसे लोक संज्ञा से बहुत दूर रहना योग्य है। समाज प्रतिबंध है, वो लोक संज्ञा वाले परिणाम है, हमारे लिए हमको करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है, हमको हमारे लिए करना है। तो मुमुक्षु जीव बहुत पक्का स्वार्थी होता है। क्या? वो अपने स्वार्थ को देखता है और उसमें वो स्वार्थ में अंधा हो जाता है। जैसा संसार में कोई स्वार्थ में बहुत अंधा होकर के कैसा भी काम कर लेता है कि नहीं करता है? आजकल जो पैसा बनाते हैं कैसे बनाते हैं? सीधी लाइन से बनता है पैसा? नहीं बनता है, बहुत गड़बड़ करनी पड़ती है, एक झूठ नहीं करना पड़ता है, कितना झूठ करना पड़ता है। लेकिन देखो भाई, हमारा स्वार्थ बहुत है उसमें, हम परिश्रम करें, लाखों करोड़ों पैदा करें और गवर्नमेंट को दे दे बस मुफ्त में, ऐसे ही दे दे, फिर हमारे खर्चे का क्या? तो जब स्वार्थ के बस वहां अनुचित कार्य जीव करता है, यहां तो स्वार्थ के बस उचित कार्य करना है, अनुचित कार्य करने का सवाल नहीं पैदा होता, ये तो उचित कार्य करने का सवाल है कि हमको निर्दोष होना है। यहां तो दूषित होते हैं संसार में, यहां तो निर्दोष होना है। हमारे निर्दोष होने के साधन में हम दूसरी दूसरी बातों को क्यों मुख्य करें? और मुख्य करके अगर हम दुर्गति में चले जाएंगे, बहुत दुख भोगना पड़ेगा, तो कौन सी समाज हमको इस दुख को दुख से छुड़ाने के लिए आएंगे? कौन सी समाज आएगी? हाँ, जिसकी हम शर्म भरते हैं वो लोग आएंगे क्या? कि बेचारा हमारे खातिर दुर्गति में चला गया, अब वहाँ दुखी है, थोड़ा अपन उसका दुख को पार्टिसिपेट करें, ये हो सकता है क्या? ये नहीं होगा। इसलिए उसमें एकांत, क्या एकांत? आत्मकल्याण को मुख्य करना, आत्मकल्याण को एकांत मुख्य करना, और आत्मकल्याण में प्रतिबंधक कारणों को एकांत हटाना, दूर करना, इतना जोर आना चाहिए। और दूसरा जो आखिर का प्रतिबंध है, वो संकल्प विकल्प का जो प्रतिबंध है, वो अपना मिथ्या आग्रह वाला है। हमारी जो समझ है उसमें अनेक प्रकार की गड़बड़ हमने भूतकाल में कर ली है, विपरीत संस्कार ग्रहण करके हम परिभ्रमण कर रहे हैं। इसलिए हमारे किसी भी प्रकार को मिथ्या आग्रह को हम पकड़ करके नहीं रखें। जैसा ज्ञानी कहते हैं उसको अवधारण करें, उसको अंगीकार करने की हमारी पूरी तैयारी, पूरी पूरी तैयारी होनी चाहिए। बैलेंस तो उस प्रकार का है कि अपनी शक्ति के बाहर जाकर के वो काम नहीं करता है। अभिप्राय में तो पूरी ताकत से अपना काम करने का है, लेकिन कभी हमारे परिणाम बिगड़े, मामूली कारण के लिए बिगड़ जाए, वहां थोड़ा एडजस्टमेंट करने का परिणाम आ जाता है, अभिप्राय नहीं होता है। अभिप्राय में तो एकांत आत्मकल्याण करना है, प्रवृत्ति और परिणमन में कभी कभी एडजस्टमेंट होता है, वो अपने परिणाम की शक्ति को देख करके होता है कि अगर हम शक्ति बाहर दौड़ लगाएंगे तो हमारे परिणाम और गिर जाएंगे। तो परिणाम को मेंटेन करने के लिए कभी थोड़ा एडजस्टमेंट करने का विकल्प आता है, अभिप्राय तो नहीं होता है। हाँ, मापदंड निकालना बहुत मुश्किल है, अपने आप निकालना थोड़ा मुश्किल है, और इसलिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि योग्यता का प्रकार अनेक है, एक बात, और प्रसंग बाहर का उदय का प्रकार भी अनेक होता है, तो उसको तो एक लकड़ी से तो नहीं सबको चला सकते कि भाई ऐसा ही होना। तो उसलिए सत्संग में जाकर के हमारे परिणामों की हम चर्चा करते हैं। सत्संग में हमारे परिणामों की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे परिणाम में ये बात बन रही है, दोष को हम दोष कहेंगे, दोष का हम ही कभी बचाव नहीं करेंगे, चाहे हमारा दोष छोटा हो या मोटा हो, और उसको खुला करके हम मार्गदर्शन उस पर ले सकते हैं कि इस दोष के पीछे, ऐसे परिणाम के पीछे हमारा अभिप्राय क्या है, हमारी ताकत क्या है, हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, पीछे रहते हैं तो क्या करते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं तो ठीक करते हैं या नहीं करते हैं, उसकी चर्चा हमको करनी पड़ती है।
दोस्त निवेदन करना पर्याप्त नहीं?
जैसे हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो हमने हमारी तबीयत का एग्जामिन करने दिया, डॉक्टर ने तबीयत का एग्जामिन करके दवाई भी दिया। हमने एक डोज लिया, दो डोज लिया, तीन डोज लिया, कुछ दवाई लेने पर हमारी तबीयत और बिगड़ी। हमें क्या करना चाहिए बताइए आप, कि फिर से हमें कंसल्ट करना चाहिए कि आपकी दवाई खाने पर हमको पीड़ा मिटनी चाहिए थी, लेकिन पीड़ा हमारी बड़ी है, अब हम क्या करें? तो बोलेगा कि तो पीड़ा बढ़ने में क्या क्या हुआ, क्या क्या आपको हो रहा है, कब हुआ, कैसे हुआ, आगे पीछे कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ कोई तबीयत ऐसा बिगड़ने का इतने इतने कारण है, उसमें से कोई बना के नहीं बना, फिर वो सोच करके दूसरा ट्रीटमेंट देंगे। तो शरीर को भी ट्रीटमेंट देने में बार बार कंसल्टेशन जरूरी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ऐसे मुमुक्षु की भूमिका में परिणाम का चढ़ाव उतार होता है, एक सा परिणाम तो किसी का चलने वाला नहीं है। तो वो जो चढ़ाव उतार होता है उसमें हमें हमारी सूझ हो तो अच्छी बात है। कभी कोई मुमुक्षु को अपने आप सूझ भी आती है तो वो अपने आप को ठीक करते हैं, कर सकते भी है, ऐसे भी होते हैं, लेकिन वे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो इसलिए ज्ञानियों ने सत्संग की आज्ञा दी है कि आपको सत्संग में से ही ये लाभ होने वाला है। परिणाम भी आत्मा का, परिणाम में जो दोष होता है वो आत्मा का रोग है, और इससे जो आकुलता होती है ये आत्मा का रोग के कारण से उत्पन्न होने वाला दुख है। जैसे शरीर का रोग से प्रसाता का दुख उत्पन्न होता है, पीड़ा होती है, वैसे दोष के परिणाम वो रोग है, इससे आकुलता का दुख होता ही है, उसके भी ऐसे शुरुआत किया कि नहीं किया, तो हम उसकी आज्ञा, गुरु की आज्ञा पर चलते नहीं है। तो कृपालु देव ने उस विषय में 254 पत्र में कहा कि दृढ़ मुमुक्षुता उत्पन्न नहीं हुई, दृढ़ मुमुक्षुता उत्पन्न नहीं हुई, यही जीव का सबसे बड़ा दोष है। ऐसे प्रकृति के कारण तो अनेक प्रकार के दोष होते ही है, परंतु सबसे बड़ा दोष कौन है कि जीव को सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न नहीं हुई, वही सबसे बड़ा दोष है। सच्ची मुमुक्षुता कब आती है? पूर्णता का लक्ष्य होने से आती है। सभी ज्ञानियों का इस विषय में एक ही अभिप्राय है, किसी का दो मत नहीं है, चाहे हम गुरुदेव का नाम लेकर के बात करें, चाहे हम कृपालु देव का नाम लेकर के बात करें, बात तो वही की बात है, दो बात तो उसमें है ही नहीं। तो ऐसा महान सिद्धांत प्रसिद्ध करके दिया, फिर भी हम उसकी आज्ञा पे नहीं चलते हैं, तो फिर आत्मकल्याण होने में, हमको ऐसा होने में कौन सा प्रतिबंध है? ये अनेक अर्थ समाये हुए हैं ना, इसकी चर्चा चल रही है, अनेक अर्थ मैंने क्या क्या के किसको या कौन से मुमुक्षु को सच्ची मुमुक्षुता की शुरुआत नहीं होती है, के जिनको प्रतिबंधक और स्वच्छंद के कारण मौजूद रहे वो उनको। स्वच्छंद और प्रतिबंध रहे और सच्ची मुमुक्षुता यानी पूर्णता का लक्ष्य आ जाए, ऐसा नहीं बनता।
जैसे प्रतिबंध हो तो वो शुभेच्छा भूमिका में आ सकता है?
शुभेच्छा भूमिका का अर्थ क्या?
इसके पहले जैसे दृढ़ मुमुक्षुता के पहले अपना भला, मेरा हित हो, स्वदया, इसको बनते हैं,
तो उसके पहले ये चिंतना होती है। यही चिंतना होती है कि अनंत काल से मेरा परिभ्रमण चल रहा है और अनंत काल बीता, उसका नाश नहीं हो रहा है, उसका मुझे बहुत दुख है। इसके लिए आकुलता होना, इसके लिए पूरी आकुलता होनी चाहिए एक दफे तो अच्छे से अच्छी। इसलिए कहा कि दृढ़ होकर के झूरे बिना, व्यथित हुए बिना, मैंने झूरे बिना, हाँ आकुलता दुख रूप है, अशांति के परिणाम है, और ये अशांति के परिणाम शांति के लिए है। क्या ये अशांति के परिणाम शांति के लिए है? तो ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है। ऐसे अशांति के परिणाम आएगा, और ये प्रशस्त द्वेष है। ऐसे तो अशांत परिणामों से पाप बंद होता है, किंतु इस प्रकार की व्यथा से पुण्य बंद होता है, पाप बंद नहीं होता है। जबकि हम पुण्य के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो स्थूल बात है। ऐसी व्यथा उत्पन्न होने से दर्शन मोह की शक्ति हीन होती है, दर्शन मोह गलता है, और मुमुक्षु को प्रारंभ में दर्शन मोह पर ही पूरा अटैक करने का है। हमारा पूरा अटैक दर्शन मोह पर होना चाहिए। प्रतिबंध चारित्र मोह तो साथ साथ है ही, जिसको दर्शन मोह होता है उसको चारित्र मोह तो होता ही है, लेकिन हमारा ध्यान चारित्र मोह पर जाता है, दर्शन मोह पर नहीं जाता है। इसलिए दर्शन मोह कैसे हटे वो विषय हमारा संशोधन का ही नहीं रहता है, और चारित्र मोह तो ज्ञानी को भी होता है तो हमको तो होवे ही। ऐसा करके दोष का बचाव हो जाता है, तो ये दोष का बचाव वो दर्शन मोह का तीव्र परिणाम है। दोष का बचाव वो दर्शन मोह की तीव्रता को सूचित करता है, ऐसी बात है। संकल्प विकल्प प्रतिबंध में अपना मिथ्या आग्रह या हमारे जो सुविचारणा है वो सुविचारणा यथार्थ नहीं है भूमिका अनुसार, तो अनेक प्रकार के अप्रयोजन भूत विषय में हमारे उपयोग चलता है, अप्रयोजन भूत विषय में हमारा उपयोग चलने लगता है, और अनेक प्रकार के हमने निर्णय, गलत निर्णय, विपरीत निर्णय कर रखे हैं, इसके कारण से हमारे विकल्प चले चलते ही रहते हैं, संकल्प विकल्प बंद नहीं होते हैं, तो उसको भी मिटाना है। और वो सत्संग के सिवा इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। कौन कौन से हैं अप्रयोजन भूत विषय? हमारे वर्तमान भूमिका के में हमको वर्तमान में क्या करना चाहिए वही हमारा वर्तमान प्रयोजन है, नंबर एक। और अंतिम प्रयोजन हमारा परिपूर्ण निर्दोष होने का है, पूर्णता का लक्ष्य है। दोनों को एक साथ रख करके कोऑर्डिनेशन करना, यही प्रयोजन भूत क्रिया है हमारे परिणामों की। ऐसा नहीं हो करके कुछ भी होता है तो प्रयोजन को छोड़ करके होता है। दृष्टांत ले ले कि हमें कहाँ जाना है वो हमको पहला निर्णय करना पड़ता है, और हम कहाँ खड़े हैं वो बात का हमको भान होना चाहिए। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से हमें हमारा जो ध्येय है उसी दिशा में हमको कदम उठाना है। ऐसा कदम उठाना यही हमारा वर्तमान प्रयोजन है। इस तरह से हमारा गोल क्या है और हमारी वर्तमान योग्यता क्या है, दो पॉइंट नक्की हो गया, कहां हम खड़े हैं, कहां हमको जाना है। दो पॉइंट में हमें जहां जाना है उसी के उसी दिशा में हमको परिणाम की गति होनी चाहिए हमारी।
अगर हम कहां खड़े हैं ये पता ना हो,
हाँ,
तो फिर हमारा ये परिश्रम
तो भी हमारा कदम सही नहीं होगा। और कहां जाना है वो अगर निश्चित नहीं होगा तो हम कहां किस दिशा में कदम उठाएंगे, हम घर पे बाहर निकले रास्ता पर आए हैं तो रास्ता उधर भी जाता है उधर भी जाता है, और चौराया हो तो चार रास्ता जाता है, क्या कहां जाएंगे। हमको निश्चित करना पड़ेगा कि हमको वहां जाना है। ठीक उसी तरह मुमुक्षु को भी उतनी दरकार उतनी सावधानी आनी चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, हमको प्रथम हमारा कदम कहां रखना है और वो हमारा कदम हमारा अंतिम ध्येय के प्रति है कि नहीं है, अनुसंधान मिलता है कि नहीं मिलता है। इतना कोऑर्डिनेशन आने से ये संकल्प विकल्प प्रतिबंध नहीं रहेगा, वरना हमारा संकल्प विकल्प भी कितना गड़बड़ वाला होगा हमको भी पता नहीं चलेगा।
कोई भी जीव जो खड़ा है तो कोई आधार पे खड़ा है तो वो उसकी भूमि है, इसके बिना तो कोई जीव नहीं है। तो वर्तमान भूमि का तो पता नहीं हो कि मेरी क्या भूमिका और मैं क्या खड़ा हूँ, ये नक्की हुए बिना कैसे प्रयोजन हो सकता
है, नहीं होता है। अपनी
भूमिका को निश्चित करने के लिए तो क्या करना है।
देखो मरीज को पेशेंट को पता नहीं है कि मुझे क्या हुआ है तो उनको तो डॉक्टर के पास जाकर के निदान कराना पड़ता है, पहले डायग्नोसिस कराना पड़ता है। दर्द होने का तो अनेक रोगों से दर्द का कारण बनता है, इसका निदान हुए बिना इलाज होगा कहां से। तो निदान होने के लिए सत्संग और सत्पुरुष चाहिए, इसके बिना निदान होगा
नहीं।
तो घूम फिर के बात तो इस जगह पे आती है, इसके बिना तो कोई इलाज। कृपालुदेव लिखते हैं कि सत्संग जैसा साधन हमने न कभी देखा है न कभी समझा है, ऐसा एक साधन है। ये शिविर नहीं है, वास्तव में तो सत्संग का हमारा प्रसंग है। हमें निर्दोष होना है तो हमें निर्दोष होने के लिए खुल करके बाहर आए कि हमारी परिस्थिति क्या है और हम मार्गदर्शन लेने की कोशिश करें।
तो जो भी कोई अपराध होता है अपने उसके पीछे अभिप्राय की चेकिंग हुए कैसे नक्की हो गए।
हाँ, दोष के पीछे अभिप्राय होता है, ये मुख्य कारण है। और वर्तमान में इस अभिप्राय के कारण से इस दोष में रस की डिग्री कितनी है ये भी देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो अवलोकन बिना वो समझ में नहीं आएगा, और अवलोकन दृढ़ मुमुक्षुता बिना चलेगा नहीं। बात तो वहां की वहां आ जाती है। तो उस तरह से बहुत सी बातें हैं, और जब हमको सूझ नहीं हो और मार्ग नहीं मिले तो इसके लिए जुड़ना आनी चाहिए। इस स्टेज में से पसार हुए बिना जो शांति मिलने वाली है आत्मा में से वो मिलने वाली नहीं है। इसलिए वो भी कर सकता है कि देखो हमारा अभिप्राय तो ऐसा नहीं है लेकिन प्रवृत्ति में तो इतना एडजस्टमेंट हम करेंगे, तो अभिप्राय के साथ करते हैं या अभिप्राय विरुद्ध करते हैं इसका जांच क्लास हम कैसे करें, ये प्रश्न यहाँ आएगा। अभिप्राय विरुद्ध होगा तो एडजस्टमेंट करते हुए बहुत दर्द होगा, अगर दर्द नहीं होता है तो हम अभिप्राय सही दें। एडजस्टमेंट के बहाने स्वच्छंद कर लेते हैं, स्वच्छंद का पोषण कर लेते हैं। तो ऐसे मामलों में तो अपने परिणामों की चर्चा किए बिना सच्चा मार्गदर्शन मिल सकता नहीं है। ये तो एक आउटलाइन है, अंडरलाइन के लिए तो उसकी पूरी पूरी चर्चा होनी चाहिए।
अभिप्राय एक साथ घटता है, गढ़ने में आता है या अभिप्राय में भी क्रम पड़ता है?
अभिप्राय एक साथ घटता है,
एक कोई क्रम
नहीं, उसमें क्रम नहीं पड़ता है। इसलिए ये अंतिम वचन पर ध्यान देना है कि दूसरे सब विकल्प दूर करके इस एक ऊपर लिखे सत्पुरुष के वचनामृत का बारंबार विचार कर ले। हमारा वचन ऐसा नहीं लिखा, सत्पुरुष का वचनामृत है ये, अनंत सत्पुरुषों का ये वचनामृत है कि दूसरे सब विकल्प दूर करके इस एक उपखे सत्पुरुष के वचनामृत पर बारंबार विचार कर ले। कहां तक? झूरणा में नहीं आए वहां तक विचार कर ले। मैंने उसे उसका ही अंदर में चलना चाहिए कि ये क्या, हमको मार्ग नहीं मिल रहा है, हमारा परिभ्रमण नहीं छूटेगा, मायूस पूरा मनुष्यायु कभी भी अनिश्चित है, पूरा हो जाएगा फिर तो कोई विवेक करने की जगह ही नहीं है तीन गति में, और मनुष्य भव बार बार मिलता नहीं। तो इसके लिए सब को गौण करके, सारे संसार को गौण करके हमको मुख्यता देनी है आत्म कल्याण को, ऐसा अभिप्राय आ जाना चाहिए। इसलिए दूसरे सब विकल्प, मैंने दूसरे धर्म साधन के विकल्प को दूर करके पहले ये होना है,
ऐसा अभिप्राय होना,
ऐसा हमारा परिभ्रमण की चिंतना में झुरना होना, ये सबसे पहला होना। बाद में पूर्णता का लक्ष्य आएगा, इसके बिना पूर्णता का लक्ष्य भी।
इसका मतलब यह हुआ कि 128 पत्र की जो भूमिका है, हाँ, पूर्व भूमिका का पत्र
ये है, पूर्व भूमिका का ये पत्र है, 128 की पूर्व भूमिका का ये पत्र है। बिल्कुल सही बात है, और ये बात अपने आत्म जागृति में आ चुकी है। आत्म उन्नति का प्रशस्त क्रम वाला जो लेख है, उस लेख में आत्म जागृति का अंक नंबर 20 और 21 में क्रम से लिया है, पहले ये होना बाद में ये होगा, ये लिया है। तो यहाँ तक रखें, पत्र का शेषण कल लेंगे।